उठो हे बागी जाग उठो, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर। शक्ति भर भुजाओं में तूफान के हाथ बंध चल, वो नहीं जो झुक गया आंधियों के आने से। खामोश हो मुड़ चली तुमसे जो टकराने से, लगा छलांग आसमान में खुद को तू आजाद कर। उठो हे बागी जाग उठो, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर। तोड़ फेंक बेड़ियां जो पैरों में पड़ी हुई, तोड़ दे कुरीतियां समाज की गढ़ी हुई। खुद को ऊंचा तू उठा, आसमां झुक जाएगा, भेड़ियों के झुंड पर आज तू ललकार कर। उठो हे बागी जाग उठो, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर। तू जो आगे ना बढ़ा कारवां रुक जाएगा, उम्मीदों के रास्तों का सिलसिला थम जाएगा। देखे ज्योति हर हृदय में जीत का पैगाम कर। मशाल ले, विजय का शंख नाद कर।
कुछ डॉक्टरों का समूह सुबह सुबह एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था। वो सभी स्पेशलिस्ट थे, मित्र थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। पहले डॉक्टर ने कहा, रुको मैं बताता हूं इसे क्या हुआ। मुझे लगता है इसे आर्थराइटिस है। दूसरे डॉक्टर ने कहा, ना मुझे लगता है उसे पैर में मोच आई है, एंकल स्प्रेन। तीसरे डॉक्टर ने कहा, ना ना मुझे लगता है उसे प्लांटर फेशियाइटिस है, पैरों के जो तलवे होते हैं उसमें सूजन आ जाती। चौथे ने कहा, ना जहां तक मैं देख रहा हूं इसके पैरों का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, इसे लोअर मोटर न्यूरॉन डिसीजेस हो सकते हैं। अगले डॉक्टर ने कहा, ना ये तो एकदम क्लियर है, इसे सीजर गेट कहते हैं, ये हेमिप्लेजिया का केस है, लखवा। इससे पहले कि अगला डॉक्टर कुछ कहता, वो व्यक्ति सामने आ गया और कहने लगा, या मोची की दुकान कहीं है मेरी चप्पल टूट गई है। तो सारे स्पेशलिस्ट के सारे डायग्नोसिस फेल हो गए। डायग्नोसिस ही गलत किया है, जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो सुख कभी था ही नहीं। वो एक भ्रम था, काम का सुख भ्रांति सुख है, उसमें सुख है ही नहीं, और यदि है भी तो वो भ्रम का सुख है। ये देह पंच महाभूतों से बना हुआ है और पंच महाभूतों में कोई काम वासना नहीं है। शरीर में आत्मा, आत्मा में मन, मन में कल्पना, और केवल ये कल्पना का सुख जो पहले अमृत सा लगता है, बाद में वही विष बन जाता है। किसी भी गृहस्थी को पूछो, क्या सुख था, कभी सुख था भी इस संसार में? था ही नहीं कभी। जीवन भर बंद कमरे में जैसे थे, कैद में थे, एक अंधकारमयी गुफा में थे, और कमरे के अंधकार को लाठी से भगाया नहीं जा सकता। दिए की आवश्यकता है होश के, जागरण के। पहले तो मानो कि हमने निदान ही गलत किया है, डायग्नोसिस ही गलत हो गया है, जिसे प्रेम ही समझे जा रहे थे कब से, उसमें प्रेम तो रत्ती भर था नहीं, वो केवल मोह ही था। रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग मैनेजमेंट। सारी माया कल्पना की माया है, सारी माया केवल एक ही विषय है, देहबोध। सारा अध्यात्म केवल इस एक ही भ्रांति को तोड़ने के लिए, सारी अव्यक्त मुरलिया, साकार मुरलिया, संपूर्ण ज्ञान योग धारणा सेवा केवल इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए है। ये देहबोध बोध का भ्रम, ये देहात्म बुद्धि का भ्रम, यही देह को हम सोचते हैं बहुत सुंदर है, पर ये सुंदरता है ही नहीं, कृत्रिम है। सौंदर्य का भ्रम है, सदियों से इस देह को सुंदर समझा जा रहा है। बगावत, उठो हे बागी, जाग उठो, बागी बनना है। बागी अर्थात बगावत करने वाले, बागी अर्थात क्रांतिकारी, बागी अर्थात जो पुरानी परंपराओं को, पुरानी परिपाटियों को, पुराने पैटर्न को खत्म कर दे, विद्रोह करने वाले, विप्लव करने वाले, म्यूटिनी करने वाले, सिपाही म्यूटिनी। 1857 की जैसे सिपाही म्यूटिनी हुई थी, स्वतंत्रता का समर, संग्राम, संघर्ष, रिवॉल्यूशन, इनकलाब। ये इनकलाब है किसके खिलाफ? स्वयं ही के संस्कारों के विरुद्ध, स्वयं ही की झूठी सत्ता के विरुद्ध। यह सत्ता पलट का खेल है। हाथ में मशाल ले विजय का शंखनाद कर, तू वो नहीं जो झुक गया आंधियों के आने से, खामोश हो मुड़ चली तुमसे जो टकराने से, लगा छलांग आसमान में खुद को तू आजाद कर। ये मानना पहले कि मैं बंधन में हूँ, मैं कैद में हूँ, मेरे पैरों में बेड़ियाँ हैं, इन बेड़ियों को तोड़ना। मैं बैसाखियों के सहारे चल रहा हूँ, बैसाखियों के सहारे से चला जा सकता है, दौड़ा नहीं जा सकता। उठो हे बागी, ओ रिवॉल्यूशनरी, जाग उठो, तोड़ फेंक बेड़ियाँ जो पैरों में पड़ी है, ये सारे भ्रम जाल तोड़ दे। कुरीतियां समाज की गड़ी हुई, खुद को ऊंचा तू उठा, आसमान झुक जाएगा, भेड़ियों के झुंड पर आज तू ललकार कर। तू जो आगे न बड़ा, कारवार रुक जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कारवा चल रहा है। उम्मीदों के रास्तों का सिलसिला थम जाएगा, देकर ज्योति हर हृदय में जीत का पैगाम कर। उठो हे बागी, जाग उठो, हाथ में मशाल ले। कौन सी मशाल? सजगता, होश, जागरण। सबसे बड़ा रोग है बेहोशी, भयंकर रोग, बेहोश रहना। विजय का शंखनाद कर, ये समझना ये मेरा है, वो मेरा है, ये मुझे बचाने आएंगे, ये मेरी मदद करने आएंगे। कोई नहीं आएगा। वो चाणक्य में दिखाते हैं ना, जब विष्णुगुप्त छोटा है, उसके पिता को धनानंद के सिपाही पकड़ कर ले गए, उसकी माँ उससे पूछती है, विष्णु, वो एक ब्राह्मण है तेरे पिता, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि वो लौट कर नहीं आएंगे, हो सकता है वो जीवित है। विष्णुगुप्त क्या कहता है? तेरा पति, ये नहीं कहता है मेरे पिता, तेरा पति कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी था, तेरा पति सत्य के लिए लड़ने वाला था, और सत्य को से लड़ने वालों को केवल मृत्यु ही रोक सकती है। इसके लिए इस भ्रम को अपने मन से निकाल दे कि वो जीवित है, तेरा पति मर चुका है। वो माँ कहती है, तेरा पति, तेरा पति क्या, वो तेरा कुछ नहीं था, जो मेरा था वो तो मेरे रक्त की मेरे धमनियों के रक्त की तरह बह रहा है, जो मर गया वो तेरा पति था। अत्यंत अशांति में, अत्यंत अत्याचार की पार्श्वभूमि पर विद्रोह का अंकुर फूटता है। महान क्रांतियां कब हुई? जब अत्याचार अपने चरम पर था, तब महान क्रांतियां होती है। जब चेतना एकदम रॉक बॉटम, सबसे नीचे चली जाती है, गिर जाती है, तब उत्थान चालू होता है। जब अत्यंत गहरी अंधेरी रात हो जाती है, तब उषा का आगमन होता है। इससे पहले कि हम आज के सूत्रों की चर्चा करें, प्रश्नों को देख लेते हैं, ढेर सारे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम बाद में करेंगे, एक एक प्रश्न को लेकर। बहुत सारे समझ कैसे विकसित करें, निर्णय शक्ति कैसे बढ़ाए, यदि बुद्धि कमजोर लगे तो उसे बुद्धिमान कैसे बनाए। सेंटर में सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक सेवा चलती है तो स्वपुरुषार्थ कैसे करें? ये कुमारों के प्रश्न है। कुमार जीवन में अकेलेपन को कैसे दूर करे जब सेंटर में अन्य कोई कुमार ना हो तो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पिछले 1 साल से नौकरी नहीं है, पिछले 6 महीने से नई टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ सेंटर भी, साथ ही सेंटर की एक सीनियर सिस्टर बीमार है, इसलिए मैं सेवा भी कर रहा हूँ। मेरी आर्थिक समस्या नहीं है, लेकिन मैं जॉब पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, मुझे लगता है सेवा पहले है, जबकि कुछ भाई कहते हैं कि यज्ञ सब संभाल लेगा, मुझे जॉब पर ध्यान देना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ? 43 कोई प्रश्न नहीं, 42 कोई प्रश्न नहीं, 41 फ्रूट डाइट पर हूँ लेकिन कुछ दिन के बाद पके हुए भोजन की ओर गिर जाता हूँ, फिर पूरा दिन भोजन के विचार चलते हैं, गिल्ट और एंग्जाइटी होती है, पुरुषार्थ कम हो जाता है, निराशा में फिर से वही चक्र शुरू होता है, इस दुष्चक्र से कैसे बाहर निकलूं? जबकि फ्रूट डाइट का आनंद भी अनुभव कर चुका हूं। अगला, दैनिक मुरली के वरदान को जीवन में कैसे लागू करूं? अगला, स्कूल जीवन में ही ज्ञान में आ गया, लेकिन उसके बाद भी कई बार अश्लील सामग्री देखकर अपनी शक्ति खोई। अब ब्रह्मचर्य की क्लास और योग से कुछ नियंत्रण आया है, लेकिन दृष्टि और वृत्ति में दिन भर काम परेशान करता है। मन में गहरी निराशा आ गई है कि कुछ हासिल नहीं हो सका। क्या इतनी गलतियों के बाद भी पूर्ण ब्रह्मचर्य संभव है, और इस निराशा से कैसे बाहर निकले? बाबा कहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान बनो और अपने हाथ से बनाया हुआ पवित्र भोजन बखाओ। लेकिन मेरी माताजी मुझे ऐसा करने से मना करती है। वे दिन भर क्राइम न्यूज और सोशल मीडिया देखती है। उसके हाथ का बना भोजन लेने से मेरे मन में पूरे दिन हलचल, बेचैनी, उदासी, डर, इच्छाएं और नकारात्मक संकल्प चलते हैं। मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरी बुद्धि स्थिर नहीं होती। कृपया कोई उपाय बताएं। अगला कुमार, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे शुरू से ही पुरुष शरीर की ओर आकर्षण होता था, स्त्री शरीर की ओर नहीं। मैं अधिकतर भाइयों के साथ ही रहता हूं, और यदि कोई सुंदर भाई दिखता है तो मैं उसकी ओर आकर्षित होता हूँ। ब्रह्मचर्य में अक्सर बताया जाता है कि स्त्री को बहन समझो या भाई भाई दृष्टि रखो, लेकिन यहाँ तो मुझे भाइयों में ही विकार उत्पन्न होते हैं। मैं क्या करूँ? क्या चांद सितारों से परे परमधाम वास्तव में कोई स्थान है? यदि है तो इतनी सूक्ष्म आत्मा को इतने विशाल परमधाम की आवश्यकता क्यों है? या फिर क्या वह भी इस संसार की तरह केवल चेतना की एक उच्च अवस्था मात्र है? परमधाम। शरीर का वजन स्थिर कैसे करें? जब शरीर के उन अंगों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं तो विपरीत लिंग का आकर्षण होता है। तब कभी कभी मन साक्षी भाव से हटकर विषय चिंतन में लगता है, गीता के अनुसार यह मिथ्याचार है। ऐसी स्थिति में जब मन नकारात्मक कल्पनाओं में रस लेने लगता है तो ब्रह्मचर्य प्रभावित होता है। विचारों में पूर्ण साक्षी भाव कैसे लाए? अपराध बोध की भावना से कैसे बाहर निकले? अगला प्रश्न, स्वप्न दोष क्यों होता है? नींद में या रात में हो जाता है, चाहे कितना भी ख्याल रखो, महीने में एक दो बार हो ही जाता है। यह बहुत से कुमारों का प्रश्न है। यदि हम किसी ऐसे बीके के यहाँ ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण मिलता है यदि हमें किसी ऐसे बीके के यहाँ ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण मिलता है जिसकी धारणा का के बारे में हमें जानकारी नहीं है, जैसे कि वे नियमित मुरली क्लास में आते हैं या नहीं, अमृत वेला करते हैं या नहीं, और क्या भोग पहले बाबा को अर्पित किया गया है, तो क्या हमें वह भोजन स्वीकार करना चाहिए? मन में उठने वाले संकल्पों के जो सूक्ष्म विकार उत्पन्न होते उसने बचने की क्या युक्ति है? मैं एक कुमारी हूँ, और यद्यपि यह मंच मुख्यतः कुमारों के लिए है, फिर भी मेरी भावनात्मक और मानसिक चुनौतियाँ उनसे मिलती जुलती है, इसलिए मेरे मार्गदर्शन चाहती हूँ। मैंने 2023 में ज्ञान को गंभीरता से अपनाया। एक व्यक्तिगत ब्रेकअप के बाद उससे पहले मेरी जीवन शैली और व्यक्तित्व पारंपरिक नहीं थे, और मैं स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों को अपने में अनुभव करती थी। जिस संबंध का मैंने उल्लेख किया वह एक महिला के साथ था। ब्रेकअप के बाद मैंने स्वयं को पूरी तरह आध्यात्मिकता में लगा दिया, लेकिन अब महसूस होता है कि कुछ भावनाएं दबी रह गई, समाप्त नहीं हुई। हाल ही में परिस्थितियों वश हम फिर मिले, जिससे पुराने भाव, लगाव, दर्द, स्मृतियां सब फिर से उभर आए। मैंने स्पष्ट किया है कि मैं किसी संबंध में नहीं जाना चाहती और सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर दिया है। फिर भी भीतर द्वंद्व चल रहा है। एक और मैं अपनी शांति बनाए रखना चाहती हूँ, दूसरी ओर भावनाएं बार बार उभरती है। इससे अपराध बोध भी होता है। मेरा प्रश्न है मैं इन भावनाओं को कैसे संतुलित करूँ बिना दबाए और बिना अपने आध्यात्मिक मार्ग से हटे। तो ये सारे आज के प्रश्न हैं। पांच युक्तियां, कौन सी युक्तियां? लत से छूटने की युक्तियां, एडिक्शन से मुक्त होने की युक्तियां, मन के पैटर्न को ब्रेक करने की युक्तियां, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है अचेतन में उसे समझने की युक्तियां और उन उस कैद से बाहर निकलने की युक्तियां, बगावत करने की युक्तियां, सबकॉन्शियस रीवायरिंग करने की युक्तियां। कल हमने 5 बातें देखी थी, कौन सी? ये नहीं कहना मैं नशेड़ी हूं, मैं लती हूं, मैं एडिक्ट हूं, मेरे से तो होता नहीं। क्या कहना? जब तलब उठे अर्ज तो केवल ये संवेदना है और संवेदना का स्वभाव कैसा है? अनित्य है। संवेदना आती है, संवेदना जाती है, ये केवल संवेदना मात्र है, बस एक लहर है, एक वेव है, एक वेवलेट है, आई है ये चली जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। इसको इतना मैं क्यों गंभीरता से ले रहा हूँ और ये क्यों समझ रहा हूँ कि इसने मुझे पकड़ लिया? अरे ये आई एक शैडो मात्र है, एक परछाई है। दूसरा, विस्तार, अपने आप को संगीत में, कला में, निस्वार्थ सेवा में, कोई सृजनात्मक कार्य या प्रकृति की ओर मोड़ देना। तीसरा, शून्य, जो अंदर बेचैनी होती है उस बेचैनी को मित्र बना लो, क्योंकि सारा खेल तो उस बेचैनी से भागने के लिए कर रहे हैं हम ना। क्यों जाता है व्यक्ति एडिक्ट की ओर, क्यों ओवर ईटिंग करता है? इमोशनल ईटिंग ही होता है अधिकतर, भूख थोड़ी ना होती है। इतनी बेचैनी है, इतना खालीपन है, कुछ खा के थोड़ी शांति अनुभव होती है। DCRS, दाल रोटी, दाल चावल रोटी सब्जी, ये शांति मिलती है इससे। ये जब तक नहीं मिले बेचैनी जाती नहीं, क्योंकि ये लेने के बाद फिर नींद आती है, फिर थोड़े देर वो दुख भूल जाता है, वो अकेलापन भूल जाता है। तो कल हमने देखा था उस अकेलेपन को, उस बेचैनी को, उस दुख को देखो, उसे उसे भागना नहीं है, उस बेचैनी को मित्र बनाओ, देखो क्या होता है। अगला, आइडेंटिटी शिफ्ट, जो आइडेंटिटी बना रखी है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बाबा ने कहा ये सब द्वापर का है। आज सुबह भी 4:30 बजे जो कमेंट्री चली बाप दादा की आवाज में, क्या था? अनादि आदि पूज्य पूर्वज। आइडेंटिटी को ही शिफ्ट कर दो। अगला, इस पल छोटी छोटी जीत अर्जित करनी है, छोटी छोटी जीत। ये नहीं करना कि मैं आज से ये खाऊंगा और वो खाऊंगा, अगले 1 घंटा बस मैं हमेशा प्रकृति के सानिध्य में रहूंगा, 1 घंटा रहूंगा बस, इतना करो। मैं थोड़ी देर मिट्टी में चलूंगा नंगे पांव, और मिट्टी में चलते हुए अनुभव करूंगा कि ये मिट्टी से ऊर्जा आ रही है। थोड़ी देर सूरज को देखूंगा, सूरज से मैत्री करूंगा, सूरज की दिव्य ऊर्जा मुझ में आ रही है। कहीं पर भी खड़ा रहूंगा, इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखूंगा, एक पर्वत दूसरे पर्वत से क्या बात कर रहा है। कहीं जाऊंगा, किसी झाड़ को स्पर्श मात्र करूंगा और अनुभव करूंगा क्या संवेदना है उसमें। पक्षियों की आवाजों को सुनूंगा, क्या कह रहे हैं मुझसे वो। परसी बिसी शैली, एक पक्षी की आवाज क्या सुन ली, महाकाव्य लिख दिया पूरा के पूरा, इतना बड़ा काव्य जो आज तक सदियों तक लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक ही कविता में असंख्य उपमाएं हैं, उसके लेवल का कोई कवि नहीं हो पाया आज तक। इतनी कल्पना है, इतनी कविता कल्पना है। व्हाट थाउ आर्ट वी नो नॉट, व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, फ्रॉम द रेनबो क्लाउड देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी एज इफ शावर्स अ रेन ऑफ मेलोडी। तुम्हारे जैसा क्या है मुझे पता ही नहीं, क्या तुम उस कवि की तरह हो जो छुपा हुआ, क्या तुम उस कन्या की तरह हो, लाइक अ मैडन, लाइक अ रोज एम्बोर्ड, क्या तुम उस रोज की तरह हो। व्हाट थाउ आर्ट वी नो नॉट, हमें पता ही नहीं तुम कौन हो। ब्लाइट स्पिरिट, हे पक्षी, तुम पक्षी तो हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, या स्वर्ग के पक्षी हो या स्वर्ग में तुम रहते हो या स्वर्ग के नजदीक कहीं हो, पोर इज दाई फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्री मेडिटेटेड आर्ट. तुम ये जो गा रहे हो कहाँ से सीखा तुमने, किसने तुमको सिखाया, कहाँ तुमने प्रैक्टिस की, रिहर्सल की, अनप्री मेडिटेटेड, अचानक ये तो बह रहा है जैसे. कितना वो उसमें उसने लिख दिया, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, मुझे आधा तो सिखाओ जितनी तेरी बुद्धि है. हम बुद्धिहीन है, आधा केवल, पूरा भी नहीं. दैट द ब्रेन मस्ट नो सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माय लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ. सारी दुनिया सुनेगी जैसे मैं तुमको आज सुनता हूँ. तो प्रकृति, तो ये पांच बातें, और भी कोई थी, पांचवी पांच हो गए ना. आज की सबसे पहली पॉइंट, माइक्रो मोमेंट अवेयरनेस. विचार और कर्म, उसके बीच में एक सेकंड का अंतर है, एक दूरी है. अभी अभी वेग जागा है काम का, और कर्म जो है, क्रिया जो है, उसके बीच में ये जो पल है, इस एक पल को पकड़ लो और उस एक पल में संकल्प करो, या ये मैं सोच रहा हूं या कोई मेरे द्वारा ये करा रहा है, कहीं ये माया तो नहीं. एक लंबी गहरी सांस लेना और वो संकल्प विलीन हो जाएगा. अभी अभी जागा एक संकल्प, बस जागा, एक्साइटमेंट का संकल्प जागा है. फर्स्ट पॉइंट क्या है आज, माइक्रो मूवमेंट अवेयरनेस. ये जो क्षणिक है, काम विकार है क्या, नसों की क्षणिक उत्तेजना मात्र है और कुछ भी नहीं है. ये उत्तेजनाओं का नर्तन है, द डांस ऑफ सेंसेशंस. क्षणिक है वो, बस जागा है, उसी क्षण उसी पल वो जागा, और अभी क्रिया भी बना नहीं है, अभी केवल मन में है. रात का समय है, 10 बजा है और जागा है. दोपहर का समय है, समय है और बिस्तर पर है और जागा है. शाम का समय है और मार्केट में घूम रहे हैं और जागा है. उस जागने और कर्म क्रिया के बीच में एक अंतराल है, इस अंतराल को देख लेना, इस अंतराल में साक्षी हो जाना, इस अंतराल में लंबी लंबी सांसें लेना और ये कहना, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं सोच रहा हूं कि कोई मेरे द्वारा ये करा रहा है. एक छोटा सा विचार है, ये कहीं ये यांत्रिक तो नहीं है, मैकेनिकल रिपीटिशन तो नहीं हो रहा है पुरानी आदत की वजह से. जैसे किसी ने प्रश्न पूछा ना कि पास्ट रिलेशनशिप से जो ब्रेकअप हो गया, उसकी यादें, उसका दर्द, उसका दुख, उसकी स्मृतियां उभरती है. अब उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, 15 साल पहले छोड़ दिया उसको, पर वो अचानक सामने आ गया, वो सब कुछ सैलाब की तरह उमड़ उठा, फिर से आ गया. अब क्या करे, लड़ाई करे, उससे भागे, उससे घृणा करे, नफरत करे, क्या करे, वो तो अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुका है. देखना, माइक्रो मोमेंट अवेयरनेस, ये है आज का सबसे पहला अभ्यास. कल शाम को हमने एक वो जो 1 घंटे की कमेंट्री है निर्वाण शतकम, कल वो लगाई और 1 घंटा अधिष्ठान में बैठे थे नॉन स्टॉप, बिना हिले डुले बस बैठे ही रहे. 15-20 मिनट के बाद ही भयंकर अशरीरी अवस्था आ गई. वो सोचा था 7:30 तक बैठेंगे, 8 बजे तक बैठे रहे 1.5 घंटा. वो कमेंट्री, वो गीत ग्रुप में पोस्ट करेंगे. वो है तो भक्ति मार्ग का या तो संन्यास मार्ग का कहेंगे, शंकराचार्य का लिखा हुआ. ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना चित्त हूँ, ना कान हूँ, ना जीभ हूँ, ना नाक हूँ, ना नेत्र हूँ, ना आकाश हूँ, ना पृथ्वी हूँ, ना अग्नि हूँ, ना वायु हूँ, ना मैं शुद्ध चैतन्य शिव स्वरूप हूँ. जैसे ही वो गीत में शब्द आता था मैं शिवोहम, तो मैं आत्मा शिव स्वरूप हूँ, निराकार हूँ, बाप समान हूँ. और हर बार वो एक ही एक रिपीट रिपीट है उसके 1 घंटे में, वो रिपीट रिपीट हो रहा था. मैं न प्राण हूँ, न पंचवायु हूँ, न सप्त धातु हूँ, न पंचकोश हूँ, न वाणी हूँ, न हाथ हूँ, न पैर हूँ, न गुदा हूँ, न जनेन्द्रिय हूँ, मैं शुद्ध चेतन चैतन्य स्वरूप हूँ। ना मैं राग हूँ, न द्वेष हूँ, न जीभ हूँ, न मोह, न मंद, न मद, न ईर्ष्या, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। सबको डिनाई कर दो, ये कुछ भी मैं नहीं हूँ, न पाप हूँ, न पुण्य हूँ, न सुख हूँ, न दुख हूँ, न मंत्र हूँ, न तीर्थ हूँ, न वेद हूँ, न यज्ञ हूँ, ना मैं भोजन, न भोजन करने वाला, न ही भोग्य पदार्थ हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। ना मैं मुझे मृत्यु का भय है, ना जाति का भेद, ना मेरा कोई पिता, ना कोई माँ, ना कोई जन्म, मेरा ना कोई बंधु है, ना मित्र है, ना गुरु है, ना कोई शिष्य। मैं निराकार हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ इंद्रियों में, मैं ना मैं आसक्ति हूँ मैं, ना मैं मुक्ति का और ना ही कोई बंधन की मुक्ति की मुझे चिंता है। इसको प्ले करेंगे, सभी स्थिर बैठ जाओ, आंखें बंद। वैसे 1 घंटे का है ये गीत, उसमें रिपीट रिपीट है, और हो सके तो कभी इसके साथ बैठ के देखो।
श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमे न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवो न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्च वायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवो
शंकराचार्य का निर्वाण शतकम। ये सब मैं हूँ ही नहीं, ये ब्रह्म मात्र है। कौन माँ, कौन बाप, कौन पिता, कौन भाई, कोई बंधु, कौन मेरा अपना, कौन अपना, कौन पराया। ये पंचभूत मैं नहीं हूँ, पंच धातु मैं नहीं, वह सप्त धातु मैं नहीं हूँ। ना मैं राग हूँ, ना मैं द्वेष हूँ, ना मैं सुख हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना खाने वाला हूँ, ना खाद्य पदार्थ हूँ। इन सबसे परे मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चेतना हूँ। ये सारे पैटर्न्स को तोड़ेगा तो बीच बीच में पहले इसको अर्थ सहित पढ़ेंगे तो एक एक शब्द जो संस्कृत का है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला, दूसरा है सेंसरी फास्टिंग। सेंसरी फास्टिंग अर्थात जो डिजिटल इनटेक हम लेते रहते हैं कंटिन्यूअस, तो हफ्ते में 1 दिन निर्धारित करें जिस दिन टोटल डिजिटल फास्टिंग करेंगे, जिस दिन कुछ भी इनटेक आने नहीं देंगे, मोबाइल से, डिजिटल से, सोशल मीडिया से, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। हमारे कान और आँख, ये 2 मेन हैं, इसमें से ही वो सारा इनटेक आते रहता है, कंजम्पशन होते रहता है डिजिटल। हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन इंद्रिय उपवास, कुछ भी नहीं आने देना। जैसे ही ये आउटसाइड का इनटेक बंद हो जाता है, अंदर के जो दबा हुआ है वो बाहर निकलता है, डिफ्रैगमेंट होता है। हमने इतने सारे अकाउंट्स खोल के रखे हैं, काम विकार के इतने अकाउंट्स हैं, सब किसे साइन आउट करो, लॉग आउट सभी अकाउंट से, इतने सारे रिलेशनशिप से, सारे रिलेशनशिप से लॉग आउट, साइन आउट। वो इस डिजिटल फास्टिंग की स्टेज में होगा, या दिन में भी 1-2 घंटा पॉसिबल है तो मोबाइल बाजू में, टोटल डिजिटल फास्टिंग, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं घुसने देना, जो है वो बाहर निकलेगा फिर और डिफ्रैगमेंट होगा सारा पुराना। इसको कहते हैं सेंसरी फास्टिंग। सेंसरी इंटेक नहीं होने देना है, हम कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हैं, कंटिन्यूअस, कोई लेक्चर, कोई क्लास, कोई गीत या कुछ, तो कुछ ऐसे टाइम निकालना है जिसमें कोई भी इंटेक ना जाए अंदर, केवल बैठो बस। 3 जैन योगी घूमते रहते हैं और एक व्यक्ति को देखते पहाड़ पर खड़ा है। वो पहला जैन साधु कहता है, मुझे लगता है ये चरवाह है, इसकी भेड़िया खो गई है, वो भेड़ियों को ढूंढ रहा है। दूसरा कहता है, ना मुझे लगता है इसके इसके साथ कोई था साथी, वो साथी खो गया है, वो साथी को खोज रहा है। तीसरा कहता है, ना मुझे लगता है वो ध्यान कर रहा है, क्योंकि देखो अच्छा एकदम स्थिर खड़ा है। वो तीनों उसके पास जाते हैं, पूछते हैं, हमने ये सोचा है तुम्हारे बारे में, अब बताओ कौन सही है हम तीनों में से, क्या तुम्हारी भेड़िया खो गई है और तुम चरवाह हो? वो कहता है, ना मेरे पास तो भेड़िया ही नहीं, भेड़ नहीं है। दूसरा कहता है, क्या तुम्हारे मित्र हो? कहते, मेरा कोई मित्र नहीं है। अच्छा तो तुम ज़रूर मेडिटेशन कर रहे हो? वो तो मेडिटेशन मुझे आता ही नहीं। तो तुम कर क्या रहे थे? वो कहते, मैं कुछ नहीं कर रहा था, केवल था, बस मैं हूं, कुछ भी नहीं कर रहा था, केवल इस पल में हूं, इस पल में होने की कोशिश कर रहा था, दिस मोमेंट। जरूरी थोड़ी ना कुछ करना ही है, कुछ करने की ही तो आवश्यकता है क्या? कुछ करने से ही तो गड़बड़ हुई है। मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कुछ करना। वो बिना कुछ किए नहीं रह सकता है, उसे कुछ करना है, कुछ तो करूं, कुछ तो करूं। एक जैन, एक राजा एक जैन मॉन्क मोनेस्ट्री में आता है, जैन मठ होता है बहुत बड़ा, उसमें आता है विजिट के लिए। तो वो जो मठाध्यक्ष है, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, इंचार्ज उस आश्रम का, जो प्रमुख गुरु है, वो उसको सब कुछ दिखाते हैं, ये हमारा शयन कक्ष है, ये हमारा किचन है, यहाँ पे लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है, ये वो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारे जो साधु है, योगी जो ब्रह्मचारी है, शाम को यहाँ पर कबड्डी खेलते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। एक बीच का जो एक कक्ष होता है ना, उसको छोड़कर राजा बीच बीच से पूछते हैं, यहाँ बीच में क्या करते हैं? ये जो है हॉल बना हुआ है या? वो ध्यान ही नहीं देता, वो उसको इधर उधर घुमाते रहे, ये हमारा प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे हमारे सन्यासी जो है वो खेलते हैं, तपस्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर ये वाला क्या है वो बताता ही नहीं। वो कहता, बस हो गया, बस रोको अभी, ये यहाँ क्या करते पहले वो मुझे बताओ, ये इतना बड़ा जो खाली जगह है यहाँ करते क्या है? वो कहते, क्या बताऊं, यहाँ कुछ करते ही नहीं, यही तो मेडिटेशन है, कुछ न करना। ये सारी करने की जगह है, ये न करने की जगह है, बस होने की जगह है, बीइंग। अगर मैं वास्तव में आत्मा हूं तो मुझे कहने की भी क्या आवश्यकता, मुझे बस उसका अनुभव करना है। तीसरा है इमोशनल ट्रांसम्यूटेशन। हम विकारों की ओर क्यों भागते हैं? क्योंकि अंदर बेचैनी है, कल भी देखा था, खालीपन है या फिर दुख है। कल हमने देखा था उससे भागना नहीं, उसको मित्र समझो। आज का जो चैप्टर है वो है कि उसको, वो जो भाव है उसको स्वीकार करो और उसको बाहर निकलने दो, आंसुओं से या प्रार्थना से निकलने दो उसको बाहर। जो अंदर दुख है ना, इसीलिए तो कोई मित्र चाहिए, कोई अंदर खालीपन है इसलिए तो हम भोजन या कुछ ढूंढते हैं। उस खालीपन को स्वीकार करो कि मेरे अंदर, ये भूल जाओ कि 50 साल से ज्ञान में है क्या, 2000 लेक्चर दिए या 10,000 लेक्चर दिए, ये लेक्चर देने के अहंकार को भी नीचे गिरा दो। 1000 लोगों को ज्ञान में लाए या 2000 लोगों को लाए, या 100 सेंटर खोले या 200 सेंटर खोले, खालीपन तो है ही, विक्षिप्तता है, फिर वो कुछ के कुछ जुड़ जाता है अंदर। कल एक आत्मा आई थी, एक बहन, वो कह रही थी कि मैं दादी ब्रिजेंद्र हूं, सारे सर्किट इधर उधर, तो ये जो भाव है, अगर दुख है तो उसको दबा के ना करो, आंसुओं से द्वारा बहने दो उसको, फिर रो लो जितना रोना है, बहुत दबा के रखा है योगी होने के चक्कर में, अचल अडोल बनने के चक्कर में, ये ब्राह्मण सब परिवार के सामने दिखाना कि मैं कितना महान हूं, मैं रोता ही नहीं कभी, इतना कुछ कुछ हुआ, अरे रो लो, बहने दो दुख को, वो दबा के रखा है प्रेशर कुकर की तरह, कल बताया था ना परसों, इतनी इच्छा है, किसी के साथ दोस्ती हो गई, ब्रेकअप हो गया और फिर ज्ञान में आ गए, ज्ञान में आ गए तो इसका क्या फिर? इसका क्या हो, सामने आ गया व्यक्ति, फिर तो फिर क्या? कितनों ने यही पूछा ना, गिल्ट का क्या करे, क्योंकि उसको बहने नहीं दिया। स्वीकार करो, ये नहीं समझो मैं अति महान महान अति मानव हूं, ये सभी मुझ में भी ये सब होता है जो सब में होता है, हमको भी बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है, सबको प्रेम चाहिए, सबको प्यार चाहिए, हमें प्यार मिला ही नहीं बचपन में, सब ने टॉर्चर किया, एब्यूज का जीवन रहा, पूरा ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा और फिर ज्ञान में आए। हर एक के ज्ञान में आने के पीछे का अलग अलग कारण है और हर एक का अपना अपना चाइल्डहुड है। किसी को सब कुछ मिला, बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण मिल गया, बचपन से ही चेतना एकदम जागृत रही, बचपन से ही वैराग्य रहा, संसार का कभी आकर्षण हुआ ही नहीं, जैसे बचपन से ही पता था ये संसार और मैं अलग हूं, ये ऐसी बहुत कुछ कुछ आत्माएं हो सकती है, और बाकी सब तो संकल संसार की वासनाओं की चक्की में पिसे हैं, अच्छे से पिस पिस के फिर आए इधर, सारा संसार के मोह बंधन जाल वासनाएं सब अनुभव किया, फिर आए इतनी कड़वाहट के साथ में, फिर बाबा बाबा अभी कर रहे। एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने एक व्यक्ति को अपनी टैक्सी में घुमाया और पूरा साइट सींग किया सुबह से शाम तक। शाम को जब वो व्यक्ति उसे पैसे देने लगा भुगतान, तो उसने मना कर दिया, कारण आप बताओ क्यों? एक टैक्सी ड्राइवर पूरे दिन भर साइट सींग कराई नए स्थान पर, हिल स्टेशन पर जब पैसे देने का समय और उसने पैसे ऑफर किए तो उसने मना कर दिया। टैक्सी ड्राइवर कहता है, मैं 20 साल से टैक्सी चला रहा हूं, आज तक किसी ने इतने प्यार से मेरे से बात नहीं की और आप में मुझे एक मित्र दिखाई दिया, मैं अपने मित्र से पैसे कैसे लूं? तब ने मुझे टैक्सी ड्राइवर के रूप में देखा, ये ड्राइवर इधर आ, ये ड्राइवर कहां चला गया था, ये पहले आदमी हो 20 साल में जिसने इतने प्यार से बात की। तो उसको वो जो दबा हुआ है उसको बह जाने दो, रो लो, प्रार्थना करो। हम सोचते हैं हम प्रार्थना कैसे करें, अरे करो, भक्त बनो और करो कि मुझे इससे मुक्त करो। अगला है एनवायरमेंटल डिजाइन, अपने वातावरण को ही बदल दो, क्योंकि जो विकार जिस कमरे में पला बड़ा है उसी कमरे में परिवर्तन नहीं हो सकता, मुश्किल है, इसलिए कमरे को बदल दो। कमरे को नहीं बदल सकते तो उसकी डिजाइन बदल दो, बेड इधर है तो बेड इधर कर दो, ट्रांसलाइट इधर है तो दीवार ट्रांसलाइट को उधर कर दो, या कुछ दिन के लिए कमरा बदल दो, स्थान ही बदल दो, क्योंकि जो विकार जहां पनपा है, पला बड़ा है, जहां उसकी पालना हुई है, अब उसके दूसरा एनवायरमेंट उसे चाहिए। इसलिए मधुबन में आना एक रिफ्रेशमेंट क्यों होता है लोगों के लिए, एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। किसी रिट्रीट सेंटर पे जाओ, सेंटर पे अगर बड़ा सेंटर है मतलब देखते हुए, तो अगर वो चेंज हो जाए कुछ दिनों के लिए, 24 घंटे के लिए चेंज हो जाए, अगर नहीं हो सकता है किसी मंदिर में जाके बैठ जाओ, प्रकृति के सानिध्य में जाके बैठ जाओ, कोई वो जो होते हैं ना आर्ट गैलरीज वहां जाके बैठ जाओ, कहीं पर भी हनुमान जी के मंदिर में जाके बैठ जाओ, वो जागृति आ जाएगी। इधर एक बहुत बड़ा हनुमान की मूर्ति है ना पीछे, कितनी बड़ी मूर्ति है ऐसी लाल वाली, दिलवारा के उधर जाते हुए, उसको जाके देख लो। अपने से जो बड़ा है ना उसको देखना है, कि जो बहुत विशाल है जिसके सामने मैं छोटा। तो एनवायरमेंटल चेंज, पूरा कमरा बदल दो या चेंज कर दो। लास्ट है इन्वोकेशन ऑफ ग्रेस, ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसमें तो कहा ना, काम विकार 100, ब्रह्मचर्य 100% करे, कैसे करे, स्वप्न दोष होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा हो सकता है क्या? ये है समर्पण, उस परम सत्ता के आगे समर्पित कर दो स्वयं को, कि बाबा मैंने सब कुछ करके देख लिया फिर भी पराजय हो रही है, तुम कुछ करो। डिवाइन इंटरवेंशन की आवश्यकता है, तुम करो, मैं इस बेचैनी से छूट नहीं पा रहा हूं, तुम मदद करो, बाबा ने तो कहा है ना, आ जाओ मेरे साथी, मेरी मदद करो, खुद ही कहा है कि ऐसा बोलो, यहाँ समर्पित कर देना है। ये सब कुछ करके भी नहीं हो रहा है, ये देह भान निकलता ही नहीं है, नए नए देह भान आते हैं। तो यहाँ क्या है, सरेंडर, इन्वोकेशन ऑफ ग्रेस, आह्वान करना है परम सत्ता का। और जब हम किसी का आह्वान करते हैं ना, जैसे शास्त्रों में दिखा है, यज्ञ हवन करते थे तो क्या करते थे, देवताओं का आह्वान करते थे, तो यज्ञ करते करते चैतन्य बिखर जाता था चारों तरफ, अपने आप सब कुछ बदल जाता था। जैसे कि देवताओं को आह्वान किया तो देवताएं प्रकट हो जाते, जैसे मराठी में कहते चाहुल, जैसे एक महसूसता होने लगती है कि चैतन्य को, वातावरण को कुछ अभी दिव्य होने वाला है, शुभ संकेत आने लगते हैं अपने आप जी। हाँ, कुछ तो मौसम में परिवर्तन होने लगता है, शुभ संकेत, यह सब यज्ञ से होता था उस समय। सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, सेवा यज्ञ, धारणा यज्ञ, तप यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, प्रतिज्ञा यज्ञ करो भीतर ही। तो आज पांच बातें हैं। सबसे पहली बात, माइक्रो मोमेंट अवेयरनेस, कर्म विचार और क्रिया के बीच में जो अंतराल है, उसमें एक विचार कि ये मैकेनिकल मैं कर रहा हूँ, मेरे से कोई करा रहा है या मैं खुद कर रहा हूँ, बस ये विचार लंबी लंबी सांसें उसको रोक देगा। दूसरा, सेंसरी फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन डिजिटल फास्टिंग, 24 आवर्स मोबाइल से दूर, कोई भी इंटेक नहीं डाल देना। टू मच इन्फॉर्मेशन कॉजेस रेस्टलेसनेस, पीसलेसनेस, बहुत अधिक सूचनाएं क्या करती है, बेचैनी उत्पन्न करती है, इसलिए बहुत अभी हटाओ। हमने बहुत पहले जब हम नए नए आए थे, सूरज भाई जी मिले थे एक बार, बहुत पहले, तो भाई जी ने कहा था कि तुम्हें ना अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम्हारे सब कुछ है, कुछ भी मत करो, यहाँ ही सब कुछ समाया हुआ है, यहां से सब निकलेगा एक दिन। 2010 में। अगला, इमोशनल ट्रांसम्यूटेशन, अर्थात जो भावना है उसको जो दबा के रखा है ना, उसको बह जाने, स्वीकार करो मैं दुखी हूं, स्वीकार करो मैं व्यसनी हूं, मैं विकारी हूं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, ये स्वीकार करते ही वो बहने लगेगा, या प्रार्थना करो कि अब मुझे उससे छुड़ाओ, ये जरूरी है। ये जबरदस्ती थोपना नहीं उसके, महान आत्मा वो सर्वशक्तिमान, ये ठीक है सुमान, बट उसको स्वीकार करो पहले। अगला है वातावरण ही, एनवायरमेंटल डिजाइन, इसमें क्या करेंगे, कुछ चेंज करके देखो, आज 1-2 घंटा प्रकृति के साथ जाके बैठो, बहुत 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 ऊर्जा मिलती है इसमें। और उसके कुछ सामान क्रिएट करो, 10-15 AI की हेल्प ले लो, 100 सामान प्रकृति के जुड़ने से अपने आप आ जाएंगे, तो वो हेल्प करेंगे। लास्ट है इन्वोकेशन, आह्वान, हे परम सत्ता, हे परम शक्ति, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। भगवान मुरलियों में कितना कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, तो आह्वान करने के बाद तो वो सुनेगा ना आह्वान, कि बाबा मैं आपका आह्वान करता हूँ, आओ और मुझे मार्ग बताओ, वो सुनता है ना, सुनेगा ना। जब भक्ति मार्ग में चिड़िया के पाँव में यदि घुंघरू है, उसकी आवाज वो सुनता है, ये बोला हमने चिड़िया नहीं, चिड़िया की, चलो ठीक है चीटी, तो हम इतने बड़े चैतन्य है यहाँ, तो वो हमारी आवाज नहीं सुनेगा। और उनके बच्चे, ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर, ही दैट प्लांटेड द आई शैल ही नॉट सी, और उनके खास, और उसने सामान इतने दिए, तुम ये वो, और बात भी नहीं सुनेगा, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, अभी के अभी आओ, प्रकट हो जाओ। तो आज के ये 5 कार्य है, ओम शांति। जल्दी
प्रीति कुमार करे कमाल से जो 5 हैक्स हैं, वो सबसे पहला है माइक्रो मोमेंट अवेयरनेस। तो इसमें एक अलार्म लगाना है फ़ोन में 1 घंटे के लिए, 1 घंटे का, तो उसमें जैसे ही वो अलार्म बजे तो सब कुछ छोड़ के एकदम फ्रीज हो जाना, कोई भी थॉट ना करना, ना कि परमधाम जाना या फिर शक्ति लेना या किरण लेना, बस पॉज। और फिर अपने मन में ये चेक करना कि हमारे मन में कौन से थॉट चल रहे हैं और ये क्यों चल रहे हैं। और ये किसके संकल्प हैं, ये ईगो के संकल्प हैं या मैं आत्मा के संकल्प चल रहे हैं। इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। दूसरा है इंद्रिय उपवास। तो आज हो सके कम से कम 1 घंटे मोबाइल नहीं चलाना, ना व्हाट्सएप चेकिंग, ना ईमेल चेकिंग, ना किसी के स्टेटस चेकिंग, हो सके तो 1 घंटे का डिजिटल फास्टिंग। तीसरा है भावों का रूपांतरण। तो इसमें अलोन म्यूजिक, माइंड हीलिंग, जब भी कोई ट्रैफिक कंट्रोल बजे उसमें जो भी हमारे इमोशन हैं उनको निकालना, जैसे भाई जी ने बताया कि आंसुओं से निकालना, वैसे ही उन थॉटों को या फिर जो भी हमारे इमोशन आ रहे हैं उनको बाहर निकालना, कैसे भी करके, नहीं उनको कुछ भी करके। जब भी कोई थॉट या फिर कोई भी इमोशन आए, अपने हाथ में एक बन डॉट लगा देना है कि मतलब आज ये इमोशन आया, या अलग अलग कलर के भी या फिर कोई भी कलर का एक टैटू सिंबल बना सकते हैं हाथ में। हाँ, कि जैसे दुख आया तो उसका एक सिंबल हाथ में, और खुशी हुई तो उसका एक सिंबल, सिंबल टैटू टाइप का, जैसे स्माइली है तो हैप्पीनेस है तो उसकी स्माइली, और दुख है तो उसको अपन ऐसा कर देंगे इस टाइप का। हम सभी, आप हम सभी, मेरा फीडबैक मत लो, अभी होमवर्क दे। और जो तीसरा है वातावरण की रचना।
उठो हे बागी जाग उठो, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर, शक्ति भर भुजाओं में तूफान के हाथ बंध चल। तू वो नहीं जो झुक गया आंधियों के आने से, खामोश हो मुड़ चली तुमसे जो टकराने से, लगा छलांग आसमान में खुद को तू आजाद कर। उठो हे बागी जाग उठो, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर, तोड़ फेंक बेड़ियां जो पैरों में पड़ी हुई, तोड़ दे कुरीतियां समाज की गढ़ी हुई, खुद को ऊंचा तू उठा आसमां झुक जाएगा, भेड़ियों के झुंड पर आज तू ललकार कर। उठो हे बागी जाग उठो, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर। तू जो आगे ना बढ़ा कारवां रुक जाएगा, उम्मीदों के रास्तों का सिलसिला थम जाएगा, देखे ज्योति हर हृदय में जीत का पैगाम कर। बागी जाग उठो, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर।